प्रभु में आनंद। ईश्वर के पुत्रों को यीशु के प्रतिनिधि होकर उनके सत्य, कल्याणकारी और क्षमाशील गुणों को प्रकट करना है। जिस प्रकार से यीशु ने अपने पिता के सुंदर चरित्र को व्यक्त किया है, उसी प्रकार हम लोगों को यीशु के विमल चरित्र का प्रचार और प्रसार इस संसार में करना चाहिए, क्योंकि उनके ममत्वपूर्ण प्रेम और दया से वो अनभिज्ञ है। यीशु ने कहा है, जैसे तूने मुझे जगत में भेजा, वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा। मैं उनमें और तू मुझ में की जगत जाने की तूने मुझे भेजा। यूहन्ना 17 आयत 18-23। प्रेरित पावल ने यीशु के शिष्यों को कहा, तुम मसीह की पत्री हो, उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। 2 कुरिन्थियों 3 आयत 3-2। अपने प्रत्येक पुत्र में यीशु एक संदेश इस जगत के लिए भेजता है। यदि आप उनके शिष्य हैं, तो ख्रीष्ट ने आप में, आपके परिवार के लिए, गांव के लिए, सड़कों के लिए एक पत्र भेजा है। आपके हृदय में यीशु का वास है और वे उन लोगों के हृदय में वार्तालाप करना चाहते हैं जो उन्हें नहीं जानते। शायद इन लोगों ने बाइबल का पाठ नहीं किया है, उसके पृष्ठों से जिसकी वाणी फूटती है उसे अथवा उस वाणी को ही नहीं सुना है। ईश्वर की कृतियों में उसके अद्वितीय प्रेम को कभी नहीं देखा है। किंतु यदि आप यीशु के सच्चे प्रतिनिधि हैं, तो आपके द्वारा वे ईश्वर के कल्याणकारी गुणों की ओर आकृष्ट किए जा सकते हैं, उसके प्रेम की प्रशंसा तथा उसकी सेवा में भी प्रवृत्त किए जा सकते हैं। ईसाई लोग स्वर्ग के मार्ग का पथ प्रदर्शक ठहराए गए हैं। उनके ऊपर यीशु की ज्योति जो चमकती है, उसे ही उन्हीं संसार पर प्रतिभासित करना है। उनका जीवन और चरित्र इतना निर्मल हो जाना चाहिए कि उसकी निर्मलता और उज्ज्वलता देख दूसरे लोग भी ख्रीष्ट और उनकी सेवाओं की उचित कल्पना कर सकें। यदि हम लोग ख्रीष्ट के सच्चे प्रतिनिधि हैं, तो ख्रीष्ट की सेवाओं की वास्तविक प्रभा को निश्चय ही आकर्षक और मोहक बनाएंगे। वे ईसाई जो अपनी आत्मा को उदासी और शोक के अंधकार से आच्छन्न कर लेते हैं तथा निरंतर कुड़कुड़ाते और शिकायत करते रहते हैं, दूसरे लोगों के समक्ष ईश्वर और ईसाई जीवन के मिथ्या आदर्श उपस्थित करते हैं। वे ऐसा आदर्श रखते हैं मानो ईश्वर अपने पुत्रों को हर्षोल्लास में पूर्ण देखकर खुश नहीं होता। ऐसा कर वे ईश्वर को मिथ्या बनाते हैं और हमारे स्वर्गीय परमपिता को कलंकित करते हैं। ईश्वर के पुत्रों को अविश्वास और उदासी के गर्त में ले जाकर शैतान बड़ा ही खुश होता है। हमारा भरोसा ईश्वर से हटते देख वो प्रसन्न होता है। उसकी उद्धार और रक्षा करने की शक्ति और इच्छा पर जब हम संदेह करने लगते हैं, तो वो फुला नहीं समाता। वो हमें यह अनुभव कराना चाहता है कि ईश्वर अपने दया के प्रबंध के द्वारा हमारी हानि करेगा। ईश्वर को करुणा और दया के भाव से विहीन चित्रित करना तो शैतान का काम है ही। उसके बारे हों सत्य व्यक्त हैं, उसकी व्याख्या वह गलत करता है। वो हमारे मस्तिष्क में ईश्वर की मिथ्या कल्पनाएं और विचार भर देता है। अतएव ईश्वर के सत्य वचनों पर विचार न कर हम भी शैतान द्वारा प्रेरित अशुद्ध और भ्रष्ट विचारों में डूब जाते हैं, और उस पर अविश्वास प्रकट कर तथा उसके विरुद्ध आक्षेप कर हम ईश्वर का निरादर करते हैं। शैतान की सतत चेष्टा यह रहती है, हमारा धार्मिक जीवन अंधकार से भरा है। वह धार्मिकता को कष्टमय और विघ्नों से भरा दिखाना चाहता है। जब ईसाई अपने जीवन में धर्म का ऐसा ही रूप खड़ा करता है, तो वह अपने अविश्वास के कारण वही काम करता है जो शैतान अपने मिथ्या प्रदर्शन उदारा करता है। जीवन पथ के बहुत से पथिक भगनी अपनी गलतियों, विफलताओं और नैराश्य के बारे अधिक सोचते हैं और अपने हृदय को शोक और क्षोभ से टुकड़े टुकड़े कर लेते हैं। जब मैं यूरोप में थी, तो एक धर्म बहन ने मेरे पास पत्र लिखा। वह बहुत संतप्त थी और उसने उत्साह और सांत्वना के कुछ शब्द मांग भेजा। जिस दिन चिट्ठी पढ़ी, उसके बाद की रात में मैंने एक स्वप्न देखा कि मैं एक बाग में हूं और एक पुरुष जो उसके मालिक के जैसा लगा, मुझे उस बाग के रास्ते से लिए जा रहा है। मैं फूल चुन रही थी और उनका आनंद ले रही थी, तो इस बहन ने, जो मेरे संग थी, मुझे पुकारा और एक झाड़ी को दिखाया जो उसके मार्ग को रोके हुए थी। वह दुखित और चिंतित हो रही थी। वह पथदर्शक के अनुसार मार्ग पर नहीं चल रही थी, किंतु झाड़ी और झुरमुट मचल रही थी। वह चिल्ला रही थी कि कितने दुख की बात है जो इस सुंदर बाग में कांटे और झाड़ी भर गई है। तब उस पथ प्रदर्शक ने कहा, वे तुम्हें केवल चुभेंगे, तुम केवल गुलाब, कुंदे, अपराजिता आदि फूलों को चुनो। क्या आपको अपने जीवन के अनुभवों में कुछ दौप्त और धवल अनुभव प्राप्त नहीं हुए? क्या कभी ऐसा मंगलमय मौका नहीं आया जब आपका हृदय उस ईश्वर के आत्मा की प्रभा से अनुप्राणित हो, उल्लास से भरना उठा हो? जब आप अपने जीवन के अनुभव के अध्यायों पर दृष्टि डालते हैं, तो क्या कुछ आकर्षक पृष्ठ नहीं दिखाई पड़ते? उन सुगंधित पुष्पों की तरह ही क्या ईश्वर की प्रतिज्ञा आपके मार्ग के चारों ओर नहीं उगी हैं? क्या आप अपने हृदय को उनके सौंदर्य और सुगंधि से भर लेना नहीं चाहते? झाड़ियों और कांटों से आपके पैरों में घाव हो जावेंगे, और यदि आप इन्हें ही चुनेंगे और इन्हें ही दूसरों को अर्पित करेंगे, तो क्या आप ईश्वर को कलंकित नहीं करेंगे और साथ साथ दूसरों को भी जीवन के मार्ग पर चलने से नहीं रोकेंगे? अपने विगत जीवन की दुखद स्मृतियों को बटोर रखना अच्छा नहीं। बीते दुख, विफलताएं और शोक के बारे बातें करना और चिंतित होना अच्छा नहीं। ऐसा करने से हम हताश हो जाएंगे, और हताश आत्मा में अंधकार ही अंधकार भरा रहता है। ये अंधकार इतना सघन होता है कि ईश्वर का प्रकाश तो आत्मा में प्रवेश पाता ही नहीं, साथ साथ यह दूसरों के मार्ग पर भी कली छाया ढंक देता है। परमेश्वर को धन्य कहो कि उसने हमारे समक्ष बड़े ही भव्य चित्र रखे हैं। हमें ये चाहिए कि हम उनके प्रेमपूर्ण आशीर्वाद और ममत्व के वचन एकत्र कर ले तथा उन्हीं पर सदा ध्यान लगाएं। जिन चित्रों को हमें बराबर ध्यान में रखना चाहिए, उनमें महत्वपूर्ण चित्र ये है: ईश्वर पुत्र का अपने पिता के सिंहासन से अलग होना तथा अपने स्वर्गीय रूप को मानवी रूप में परिवर्तन करना, ताकि वे मनुष्यों को शैतान के चंगुल से निकाल सकें। हमारे हित के लिए उनकी जीत, जिससे मनुष्यों के लिए स्वर्ग का द्वार खुल गया और मनुष्यों की आंखों के सामने वह ईश्वरीय प्रकोष्ठ प्रत्यक्ष हो गया, जहां ईश्वर अपनी विभूतियों को प्रत्यक्ष करता है। पाप विदारा विनाश के गर्त में ढकेले हुए मनुष्य का उद्धार और अनादि अनंत परमेश्वर के साथ संबंध तथा उन मनुष्यों के मुक्तिदाता पर विश्वास और भक्ति कर यीशु की धार्मिकता के वस्त्रों को पहन ईश्वर के सिंहासन के पास उपस्थित होना। ईश्वर की इच्छा है कि हम इन्हीं चित्रों पर ध्यान लगावे। जब हम ईश्वर के प्रेम को संदेह की दृष्टि से देखते हैं, उनकी प्रतिज्ञाओं पर अविश्वास प्रकट करते हैं, तो हम उन्हें अपमानित करते हैं और उनके पवित्रात्मा को कष्ट देते हैं। अपने सारे जीवन भर यदि माता ने प्राणपण से अपने बच्चों को सुख और आराम पहुंचाने की चेष्टा की है, और अब यदि बच्चे अपनी मां की शिकायतें बराबर करते हैं कि उसने उनकी भलाई नहीं की, तो माता का हृदय भग्न न होगा? अपने पुत्रों विदारा इस प्रकार का व्यवहार क्या मां बाप पसंद करेंगे? अब जिस स्वर्गीय परमेश्वर ने हमारे प्यार के कारण अपना एकमात्र पुत्र हमें सौंप दिया, यदि उसके प्रेम पर हम अविश्वास करें, तो हमें क्यों कर प्यार करेगा? प्रेरित ने लिखा है, जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, पर उसे हम सबके लिए दे लिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों कर न देगा? रोमियो 5:32। फिर भी कितने लोग हैं जो वचन से नहीं तो कार्य से यह घोषित करते हैं कि मेरे लिए इतना करना ईश्वर का उद्देश्य नहीं है। शायद वह दूसरों को प्यार करता है, पर मुझे प्यार नहीं करता। ऐसे सारे विचार हमारी आत्मा के लिए हानिकारक हैं, क्योंकि शंका और संशय के प्रत्येक शब्द जब हम मुंह से निकालते हैं, तो शैतान की परीक्षा को आमंत्रित करते हैं। ये मन में संदेह करने की आदत की जड़ जमाती है और स्वर्ग दूतों को आपकी सहायता करने से दूर भगाती है। जब आपकी शैतान परीक्षा कर रहा हो, तो शंका और संदेह का एक शब्द भी मुंह से ना निकालिए। यदि आप उसकी प्रेरणा में पड़ रहे हैं, तो आपके मस्तिष्क में अविश्वास और विरोध की भावना तीव्र हो जावेगी। ऐसी अवस्था में जब आप अपने भाव और विरोध की भावनाओं को शब्दों में अदा करेंगे, तो संदेह के प्रत्येक शब्द से आप में हानिकारक प्रतिक्रियाएं होंगी, और ये दूसरों के जीवन में बीज की तरह जा पड़ेगा। शीघ्र ही अंकुरित होगा और फल भी देगा। तब इसके प्रभाव के विस्तार को रोकना मुश्किल होगा। आप पाप की आसक्ति और शैतान के जाल से विकट चेष्टाओं द्वारा निकल जाएं तो निकल जाएं, लेकिन अन्य लोग जो आपके प्रभाव में पड़कर अविश्वास के अंधे कुएं में गिरे पड़े हैं, वे शापात बचकर ना निकल सकें। अतएव वैसे ही बातें बोलनी चाहिए जिससे आध्यात्मिक जीवन और शक्ति बढ़ें। स्वर्गदूत गण सदा ये सुन रहे हैं कि आप अपने स्वर्गीय स्वामी के बारे कैसे वृतांत दूसरों को सुना रहे हैं। अतएव आपको सदा उन्हीं के बारे संभाषण करना चाहिए जो ईश्वर के समक्ष आपको मुक्ति के लिए सतत निवेदन करते हैं। जब जब आप किसी मित्र से मिले, तब तब ईश्वर के गुणगान ही होठों और हृदयों में रहें। इससे आपके मित्र के विचार शीघ्र ही योशु की ओर आकृष्ट होंगे। सबों को क्लेश भोगने पड़ते हैं, सबों को भार सहना पड़ता है, सबों को कठिन परीक्षाओं का मुकाबला करना पड़ता है। अतएव अपने मित्रों से अपने दुख, रोग और पीड़ाओं का उल्लेख मत कीजिए। इन्हें ईश्वर के समक्ष प्रार्थना में लाइए। वह नियम बना लीजिए कि शंका अथवा निराशा का एक शब्द भी मुंह से ना निकालूंगा। आप अपने आशा से भरे और हर्ष से डूबे शब्दों के द्वारा दूसरों के जीवन में प्रकाश तथा उनके उद्योगों में साहस और दृढ़ता भर सकते हैं। कई साहसी वीर पुरुष हैं जो परीक्षाओं द्वारा बुरी तरह दबे हुए हैं और स्वार्थ तथा दुर्व्यसनों से संघर्ष करते करते पिसे जा रहे हैं। ऐसे तुमुल संग्राम प्रवृत्त लोगों को निराश मत कीजिए। ऐसे लोगों को साहस और आशा के शब्दों द्वारा उत्साहित कीजिए ताकि वे दुन्ने बल से शत्रु पर आ पड़े। तभी यीशु की ज्योति आपसे फूट निकलेगी। हम में से न कोई अपने लिए जीता है। रोमियो 14:7। हमारे अप्रत्यक्ष अथवा परोक्ष प्रभाव द्वारा कितने लोगों के हृदय में नई उमंग और शक्ति भर सकती है, अथवा वे निराश हो ख्रीष्ट और सत्य से विमुख जा सकते हैं। बहुत से लोगों के मन में यीशु और उनके जीवन के बारे भ्रांति मूलक धारणा में है। उनकी धारणा ये है कि यीशु में ममत्व नहीं था, अनुराग नहीं था, और वे कड़े, रूखे तथा उदासीन थे। बहुधा समस्त धार्मिक अनुभव ही काली धारणा से आवृत्त हैं। अक्सर ये कहा जाता है कि यीशु कई बार रोए, किंतु यीशु को मुस्कुराते किसी ने नहीं जाना। हमारे मुक्तिदाता का वास्तविक जीवन दुखमय था। वे सदा से शोकग्रस्त रहे, क्योंकि उन्होंने अपने हृदय को सारे मनुष्य के दुखों के लिए खोल दिया था। परंतु यद्यपि उनका जीवन आत्मत्यागपूर्ण था, यद्यपि उनके जीवन में पीड़ाओं और चिंताओं की सघन छाया पड़ी हुई थी, तथापि उनकी स्फूर्ति और अंत चेतना विनष्ट नहीं हुई थी। उनके चेहरे पर शोक की कालिमा कभी नहीं रही, किंतु सदा गंभीर शांति की झलक रही। उनका हृदय जीवन का अजस्त्र स्रोत था, और वे जहां भी जाते थे विश्राम और शांति, आनंद और उल्लास लिए जाते थे। हमारे मुक्तिदाता बड़े गंभीर थे, पूरी एकनिष्ठ से कर्तव्य में संलग्न थे, किंतु कभी उदास अथवा श्रीहीन नहीं थे। जो भी उनका अनुकरण करेगा अपने जीवन में उद्योगशील रहेगा और वैयक्तिक उत्तरदायित्व को पूरी तरह समझेगा। अस्थिरता जीवन का शमन होना। शोरगुल से भरा हुआ आमोद प्रमोद उसके जीवन से बहिष्कृत होंगे, असभ्य दिल्लगियां नहीं होंगी। यीशु के धर्म से गंभीर नदी की प्रशांति मिलती है। हर्षोल्लास के प्रकाश को ये नष्ट नहीं करता, ये प्रसन्नता को दबाता नहीं, और न मुस्कान भरे प्रफुल्ल मुखड़े पर बादल की धूमिल छाया ला गिरता है। ख्रीष्ट सेवित होने नहीं परंतु सेवा करने आया था, और अब उनका अतुल प्रेम हमारे हृदय में स्थापित रहेगा तो हम निश्चय ही उनके आदर्श उदाहरण का अनुकरण करेंगे। यदि हम दूसरों के क्रूर और अन्याय से भरे कार्य अपने हृदय में समेट कर रखे रहेंगे तो उन्हें प्यार करना हमारे लिए मुश्किल होगा। खासकर जिस प्रकार ख्रीष्ट ने हमें प्यार किया, उस तरह प्यार करना तो असंभव ही होगा। किंतु यदि हमारे हृदय में यीशु का हमारे प्रति आश्चर्यजनक प्रेम और दया का भाव बना रहे, तो हम उसी भाव से दूसरों के प्रति बर्ताव भी करेंगे। हमें एक दूसरे को प्यार और सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए, चाहे दूसरों में दुर्बलताएं और त्रुटियां हों या नहीं। इन कमजोरियों पर नजर रखते हुए भी प्रेम प्रदर्शित करना ही उचित है। हमें नम्रता और दीनता का भाव लाने तथा अपने स्वार्थ को दबाने की आदत डालने की चेष्टा करनी चाहिए। दूसरों के अवगुणों को ममता भरी दया की दृष्टि से देखना उत्तम है। इससे हमारे अंदर स्वार्थ की जितनी संकुचित भावनाएं हैं सब नष्ट हो जाएंगी। तब हम उदार हृदय एवं सहिष्णु हो उठेंगे। स्तोत्रकर्ता ने कहा है, यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए रहे। भजन संहिता 37 आयत 3। यहोवा पर भरोसा रख। प्रत्येक दिन के कुछ कर्तव्य हैं, कुछ अपनी चिंताएं होती हैं, कुछ उलझने होती हैं। जब जब हम एक दूसरे से मिलते हैं, अपने दुख और चिंताओं के बारे कितनी तत्परता से बातचीत करते हैं। इतने अधिक फीके और मुसीबतें आ जाती हैं, इतने भय आ दबाते हैं, चिंताओं की इतनी बड़ी गठरी उलट दी जाती है कि जैसे हमारे कोई करुणामय प्रेमपूर्ण मुक्तिदाता हैं ही नहीं, और वे हमारी प्रार्थनाएं सुनते ही नहीं, दुख के समय हमारी सहायता करते ही नहीं। कुछ लोगों की आदत डरने और मुसीबतें बाधा लेने की हो गई है। प्रत्येक दिन उनके आसपास ईश्वर के प्रेम के चिन्ह भरे रहते हैं। नित्य प्रति उनके वरदहस्तों के उपहार वे पाते और प्रसन्न होते हैं, किंतु इन वर्तमान के उपहारों पर वे दृष्टि ही नहीं डालते, जैसे वे हैं ही नहीं। असल बात तो ये है कि उनके मस्तिष्क में सदा ये भावना रहती है कि ये वस्तु असंतोषप्रद है, वो अनुचित है, और इस तरह वे असंतुष्ट हो जाने के आदि हो जाते हैं। वे डरते हैं कि कहीं ये दुखद घटना ना हो जाए, अथवा कुछ चिंताएं आ जाती हैं जो वास्तव में छोटी हैं। तो भी इन छोटी चिंताओं में मन इतना व्याकुल हो जाता है कि मनुष्य असंख्य विशाल उपहारों को, जिनके लिए उन्हें कृतज्ञ होना है, देख नहीं पाते। अब जब मुसीबतें आ जाए तो एकमात्र सहायक ईश्वर के पास दौड़ना चाहिए, किंतु होता ऐसा नहीं है। क्लेश की मार से लोग ईश्वर उन्मुख न होकर ऐसे अशांत, अधीर और व्याकुल हो जाते हैं कि ईश्वर को भूल जाते हैं और ईश्वर से और भी दूर जा पड़ते हैं। क्या ये आवश्यक है कि हम इस पर अविश्वास करें? हम क्यों ऐसे अकृतज्ञ और संशयपूर्ण बने? यीशु हमारे परम मित्र हैं। स्वर्ग के सारे प्राणी हमारे कल्याणात्मक काम के लिए उद्दत हैं। दैनिक जीवन की चिंताओं और उलझनों में हमें अपने मन की शांति, स्थिरता और धैर्य न खोना चाहिए। यदि हम अशांत, अधीर और व्याकुल हो जावेंगे तो हम सदा चिड़चिड़े रहेंगे और एक न एक चीज से असंतुष्ट और रूपट रहेंगे। हमें अधीर या व्याकुल न होना चाहिए, क्योंकि वह तो हमें क्रोधी बनाता है और हमारा ह्रास करता है, न कि वह मुसीबतों को अच्छी तरह सहने में हमें मदद करता है। आप अपने व्यवसाय में घबरा सकते हैं, तब आपके भविष्य का जीवन अंधकार से भरा दिखाई पड़ सकता है और तब हानि की संभावना हो सकती है। किंतु निराश मत होइए, अपनी सारी चिंताएं ईश्वर के चरणों पर अर्पित कीजिए, धैर्य धारण कर प्रसन्न रहिए, फिर अपने व्यवसाय को चतुराई से संभालने की शक्ति पाने के लिए प्रार्थना कीजिए। इस तरह हानि और विनाश को रोकिए, अपनी सारी शक्ति से लाभ के लिए चेष्टा कीजिए। यीशु ने अपनी सहायता के लिए वचन तो दिया है, लेकिन हमें निश्चेष्ट बैठे रहने नहीं कहा। जब अपने सहायक प्रभु पर भरोसा करके आपने अपनी सामर्थ्य पर कोशिश की है, तो जो भी फल प्राप्त हो इसे प्रसन्न होकर ग्रहण कीजिए।
ईश्वर की ऐसी इच्छा नहीं कि उसके मनुष्य चिंताओं के बोझ से दबे रहे, किंतु हमारे प्रभु हमें धोखा नहीं दे सकते। वो हमें वो नहीं कहता, डरो मत, तुम्हारे मार्ग में कोई खतरा नहीं। वो ये जानता है कि जीवन के मार्ग में अनेक दुख हैं, मुसीबतें हैं, और वो हमसे साफ तौर से कह देता है, जीवन कष्टपूर्ण है। वो पाप और कुव्यसनों से भरे संसार से हमें दूसरे लोक में ले जाना नहीं चाहता, किंतु हमारी सहायता के लिए उस सदा मदद देने वाले ईश्वर को हमें दिखा देता है। अपने शिष्यों के लिए उसने जो प्रार्थना की थी वो ऐसी थी, मैं ये विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, पर ये कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। फिर वो कहते हैं, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, पर ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीता है। यूहन्ना 17 आयत 15, 16 आयत 33। पहाड़ पर उपदेश देते समय यीशु ने अपने शिष्यों को बहुमूल्य शिक्षाएं दी थीं,
जिसमें उन्होंने ईश्वर पर भरोसा करने की आवश्यकता बतलाई थी। इन शिक्षाओं का प्रयोजन यही था कि इससे सभी युगों के बच्चे उत्साह ग्रहण करें। ये शिक्षाएं हमें पूरी शांति और सांत्वना के पाठ सिखाते हैं और इसलिए हमें भी प्राप्त हो गई हैं। मुक्तिदाता ने आकाशगामी चिड़ियों को दिखलाया, जो चिंताओं से मुक्त, स्वच्छंद, मगन में ईश्वर गुणगान की मधुरतान छेड़ती हुई उड़ी जा रही थी, और कहा, वे न बोते हैं न काटते, फिर भी परमपिता उनकी आवश्यकताएं पूरी कर देते हैं। मुक्तिदाता पूछते हैं, क्या तुम उनसे बहुत बढ़कर नहीं? यूहन्ना 6:26। मनुष्यों और पशुओं की आवश्यकताओं की व्यवस्था करने वाले अपने हाथ खोल देते हैं और अपने सारे प्राणियों की जरूरतें पूरी करते हैं। छोटी चिड़िया को भी वे भूलते नहीं। ये बात ठीक है कि वे चोंच में दाना नहीं डालते, फिर भी दाने की व्यवस्था वे कर देते हैं। दाना संग्रह करना ईश्वर का काम नहीं, चिड़िया का काम है, और दाना छींटना ईश्वर का काम है। अपने छोटे खोते के लिए सामान जुटाना चिड़िया का काम है। अपने काम करते करते वे गीत गाती रहती हैं, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें पालता है। और क्या तुम उनसे बहुत बढ़कर नहीं? क्या आप अपनी सारी कुशाग्रता, प्रतिभा और भक्ति से चिड़ियों से अधिक बहुमूल्य नहीं हैं? अब यदि हम उन पर भरोसा करें, तो जिसने हमारा जन्म दिया, हमारे जीवन का लालन पालन कर हमें बनाए रखा तथा जिसने अपने स्वरूप में हमें निर्मित किया, क्या ये ईश्वर हमारी आवश्यकताएं अब पूर्ण न करेगा? सुंदर घने रूप में उगे ईश्वर के मनुष्य के प्रति अतुल प्यार के साकार रूप सौंदर्य सुषमा में प्रफुल्ल कुसुम के दलों को दिखाकर यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैदान के सोसनों पर ध्यान करो, वे कैसे बढ़ते हैं। इन प्राकृतिक कुसुमों का सौंदर्य और सरलता सुलेमान की भव्यता और ऐश्वर्य को फीका बना देती है। ईश्वर की सृष्टि में उगे फूलों की प्राकृतिक सुषमा और सौंदर्य राशि के आगे कला कौशल द्वारा बनाया चमचम चमकने वाला सुंदरतम और श्रेष्ठ वस्त्र भी तुलना के योग्य नहीं। यीशु पूछते हैं, यदि परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भार में झोंकी जाएगी, ऐसा पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, वो क्यों कर तुम्हें ना पहनाएगा? मत्ती 6:28-30। जब ये स्वर्गीय चित्रकार क्षणभंगुर और तुरंत मुरझाने वाले पुष्प को कोमलता और सुंदर रंग से सजाते हैं, तो आप जैसे लोगों की वो कितनी सावधानी और श्रृंगार करेगा, चिंता करेगा और ममता से रखेगा, क्योंकि आपको उसने अपने ही सदृश बनाया है। अविश्वासी लोगों के लिए वो पाठ यीशु की सबसे बड़ी चोट है, उनकी आकुलता और चिंताओं पर एक फटकार है। ईश्वर चाहता है कि उनके समस्त पुत्र पुत्रियां खुश रहें, आनंदमय रहें, शांत रहें और आज्ञाकारी रहें। यीशु ने कहा है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है वैसे मैं तुम्हें नहीं देता। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। यूहन्ना 14:27, 16:11। इस्राएल का तारा।
तेरी उपस्थिति में मैं प्रभु आत्मा में आनंद ही पाता, जब जब है संताप जताता तभी तेरी पुकार लगता। दिन भर तुम सांत्वना बनते, रात्रि में मैं गीत बनता। तुम मेरी आशा और मुक्ति, तुम में मैं सब हूं पाता, ओ जायम की फूल कुमारी। तुमने देखी दीप्ति मधुरतम, इज़राइल पर जो नक्षत्र देता प्रभा चिर उज्ज्वलतम, तेरे ताने वितान में प्रिय आके ये क्या मेरे प्रियतम। जरा बता दो किधर गए अब झुंडों को लेकर सुंदरतम, रुंझुण रुंझुण गो घटी सी मीठी उनकी अमृतवाणी, मृत्यु शैया पर कराहते निष्प्रभ भी सुनते हैं प्राणी। लेबनान के देव दारू झुक उनके सम्मुख होते पानी, उनके सांसों के परिमल से वायु बनती सुगंधि की रानी। पूत धर्म की निझरनी से उनके दोनों ओठ बने हैं, सिक्त हुई करुणा वाटिका उनके शब्द यों स्नेह सने हैं। उनकी करुणा पर अचंबित मुक्ति के सच तान तने हैं, इस प्रफुल्ल प्रकाश डूबे मुख से जो आ रहे बने हैं। उनके कृपा कटाक्ष से सारे स्वर्गदूत आनंद मनाते, लाख लाख प्राणी वाणी हित
उसी ओर है कान लगाते। जब जब वाणी फुट निकलती, देशकाल गुम्फित हो जाते, अनंत काल तक ईश्वर के यश ध्वनित प्रतिध्वनित हो जाते। वह आनंद जो स्वार्थ को लक्ष्य कर मांगा जाएगा और जिसका कर्तव्य से कुछ संबंध न रहेगा, असंतुलित आनंद है, क्षणिक है, वह यथार्थ में विश्वास है, वह स्थायी नहीं और आत्मा में प्रकाश तथा हर्ष नहीं लाता, मरण दुख और एकाकीपन भरता है, किंतु ईश्वर की सेवा में हर्ष और संतोष भरा रहता है। सच्चे ईसाई कभी पथ से भटकते नहीं, उसे निरर्थक अनुताप और नैराश्य नहीं सताते। सच्चे ईसाई की तरह रहकर यदि हम इस जीवन में सुखी नहीं, तो उस जीवन में अवश्य रहेंगे। उसी की ओर आशा करना हमारा धर्म है। वहीं ईसाई को यीशु के समागम के हर्ष प्राप्त होंगे, उनके प्रेम का प्रकाश मिलेगा, उनकी उपस्थिति की अनंत सांत्वना मिलेगी। जीवन के प्रत्येक कदम से हम यीशु के निकट पहुंच सकते हैं, उनके प्रेम का पक्का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं और शांति के स्वर्गीय गृह की ओर एक पग आगे जा सकते हैं। अतः हमें अपने विश्वास तोड़ फेंकना उचित नहीं, इसके विपरीत हमें अपने दृढ़ निश्चय दृढ़तर करते जाना चाहिए, विश्वास और भी पक्का करते जाना चाहिए। यहां यों तो यहोवा ने हमारी सहायता की है और वह हमारे अंतिम क्षण तक सहायता करेगा। 1 शमूएल 7:12। उन कीर्ति स्तंभों को देखिए जिससे आपको याद हो जाएगा कि उस प्रभु ने हमारी सांत्वना और उद्धार के लिए क्या किया है, हमें शत्रु से बचाने के लिए क्या किया है। ईश्वर के सारे करुणा और दया से भरे कार्य, जितनी बार उसने आंसू पोंछे हैं, जितनी पीड़ाएं उसने हटाई है, जितनी चिंताओं से उन्होंने मुक्त किया है, जितने भय दूर किए हैं, जितनी आवश्यकताएं पूरी की है, जितने आशीर्वाद और वरदान उन्होंने दिए हैं, हमें ये सारी बातें सदा याद रखनी चाहिए। हमें यह याद रखनी चाहिए कि हमारी जीवन यात्रा उन्हों के कारण सफल होती चली जा रही है। भविष्य के जीवन में आने वाली नई उलझनों के देखे बिना हम रह ही नहीं सकते, किंतु आगे की ओर दृष्टि डालने के समय हम कर पीछे की ओर भी देख लें तो अच्छा हो। तब विगत जीवन की झांकी ले आगत जीवन के लिए कह सकेंगे, यहां लो तो यहोवा ने हमारी सहायता की है और तू अपने जीवन भर चैन से रहें। व्यवस्था विवरण 33:24। वह याद रखें कि जिस परीक्षा में आप लगाए जा रहे हैं वह आपकी सामर्थ्य और शक्ति से अधिक कठिन न होगी। अतएव जहां भी हो हमें अपने कर्तव्य में पिल पड़ना चाहिए और सदा यह विश्वास रखना चाहिए कि चाहे जो भी हो जाए, दुख और पीड़ा के अनुपात में शक्ति और सामर्थ्य हमें दी जाएगी और धीरे धीरे स्वर्ग के फाटक ईश्वर की संतानों के प्रवेश के लिए खुल जावेंगे और उस अतुल भव्य सम्राट के मुख के आशीर्वचन सुमधुर संगीत की तरह मनुष्य पुत्रों के कर्ण कुहरों में प्रवेश करेंगे। हे मेरे पिता के धन्य लोगो, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। मत्ती 25:34। तब उद्धार प्राणी उस गृह में स्वागत किए जावेंगे जिसे यीशु उनके ही लिए बना रहा है। वहां उनके मित्र संसारी मित्रों की तरह पापी, झूठे, मूर्ति पूजक, अपवित्र और नास्तिक न होंगे। वे लोग इन सबों के साथ रहेंगे जिन्होंने शैतान को हराया है, ईश्वरीय अनुग्रह के द्वारा सदृढ़ और पवित्र चरित्र प्राप्त किया है। यीशु के लहू के द्वारा इन लोगों की प्रत्येक पापपूर्ण प्रवृत्ति, प्रत्येक दुर्बलता और अपूर्णता जिससे उन्हें इस लोक में संताप मिल रहा था दूर हो गया है और यीशु की महिमा के अप्रतिम सौंदर्य एवं प्रभा ने इन्हें इतना उज्ज्वल और चमत्कृत बना दिया है कि ये सूर्य से भी तेजस्वी हैं। इस बाह्य उज्ज्वलता से भी अधिक नैतिक सौंदर्य और चरित्र की भव्यता उनके शरीर से फूट निकल रही है। उस धवल सिंहासन के पास वे कीर्ति की तरह विमल और धर्म की तरह पवित्र खड़े हैं और स्वर्गदूतों की तरह प्रतिष्ठा और सम्मान का उपभोग कर रहे हैं। मनुष्य को जब ऐसा बहुमूल्य उत्तरदायित्व प्राप्त होगा तो वो अपने प्राण के बदले क्या देगा। मत्ती 16:26। वो दीन हो सकता है किंतु फिर भी उसके पास वो ऐश्वर्य और प्रतिष्ठा रहेगी जो वो इस लोक से कभी प्राप्त न कर सकता। मुक्त हुए और पाप से धुले प्राणी अपनी सारी कल्याणकारी शक्तियों को ईश्वर की सेवा में अर्पित कर देने पर जैसे बहुमूल्य हो उठते हैं, वैसी बहुमूल्य और कौन सी वस्तु है? कोई भी नहीं। और स्वर्ग में जब एक प्राणी भी मुक्त होकर ईश्वर और स्वर्गदूतों के बीच आ जाता है, यह आनंद पवित्र विजय के उपलक्ष्य में सुमधुर गीतों द्वारा व्यक्त होता है। मेरे जीवन मेरे सर्वस्व, सूली को जब जब लू निहार, जिस पर विभूति के चिर कुमार ने तजे प्राण, तब तब हानि भी समझू मैं निज विपुल लाभ वर्षत समान। फिर धिक्कारू निज अहंकार, दुख प्रेम पूर्ण ये बड़ी धार, जो फूटी हस्त पाद मस्तक को कर और पार। दुख से आविल और प्रेम सिक्त ये रक्तधार, कंटक भी ताज का है श्रृंगार। मुझसा पतित और भ्रष्टाचार, गा गाकर उनके यश मैं क्षम्य हुआ हूं आज। तब करूं गर्व प्रभु यीशु की सूली का आज, कर दो मुझको अब निर्विकार। विस्तृत प्रकृति का सब उभार अर्पण करने को उन पर क्षुद्र उपहार, उनके अनंत प्यार पर वारूं निज जीवन अपार, अपने सर्वस्व का तार तार। जैसा तथा वो प्रगाढ़ प्रेम है मरणशील क्या कभी पिया, मोहित कर मेरे प्राणों को पाषाण हृदय मम द्रवित किया। जीवन गठरी पद तल रखा, स्वर्ग सुख को बस पहचान लिए, कानों में मेरे चुपके जब कहा उन्होंने क्षमा किया। मेरे जीवन मेरे सर्वस्व, मेरे पग के चिर प्रकाश, मैं भ्रष्ट पथिक पर तुम बल हो, करुणा प्रदेश की निर्झरणी पथिक हित सरित विमल जल हो, अंतर की आकुल मुख हेतु भोजन पवित्र और निर्मल हो, मेरे पथ के प्रदर्शक जीवन अनंत के संबल हो। रजनी में ज्योतिष पुंज बनो, दिन में तुम स्वर्गीय प्रभा बनो, लहरें यदि भग्न करे नौका, मेरे हित लंगर कुल बनो। हे अनंत प्रभु की वाणी, उनके सुपुत्र की सदिच्छा, जीवन के साधन और स्वर्ग प्राप्ति के सोपान बनो। प्रार्थना का समय लाता मुझको जो चरणों पर, वो समय प्रार्थना का सुंदर उषकाल से साय तक उससे न कोई सुंदरतर। वो धन्य प्रात है शांत मधुर, धन्य अरे साय सुंदर, जब छोड़ चलूं जगती तल को प्रार्थना के पंखों पर चढ़कर। मुझको नवीन तू देते कर पाप क्षमा करके ईश्वर, पुलकित करते मेरे एकांत स्वर्गों की आशाएं भर। जब तक करता जीवन को पार, तब तक कर लो वो स्वीकार, प्रार्थना में करता रहूं अर्पित अंतरस्थल के सारे उद्धार।